ओम शांति। सभी ठीक हैं? ठीक हैं सब? माताएं खुश? भाई खुश? अच्छा, देखो अमृतसर की धरनी कितनी प्यारी, विश्व के अंदर फेमस, न्यारी। भारत के इतिहास तो क्या, विश्व के इतिहास में अमृतसर का नाम कितना रोशन है। और अमृतसर के शहीदों की कहानियाँ और अमृतसर की त्याग तपस्या, देश के लिए प्यार की कहानियाँ पूरे विश्व के अंदर वर्णन करते हैं। तो ऐसी धरनी से आप सब मधुबन प्यारे घर, बाबा के घर, हम सब दादियों की त्याग तपस्या की भूमि और हमारे वरिष्ठ भाई बहनों की तपस्वी भूमि में आप सबको बट्टी करने का सुंदर मौका मिला। तो इसलिए बाप दादा, एडवांस पार्टी की दादियाँ आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और स्वागत करते हैं। और दूसरी बात, आध्यात्मिक हिस्ट्री के अंदर और लौकिक हिस्ट्री के अंदर अमृतसर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सबने अपने ही शहर का इतिहास सुना होगा, ये तो जैसे कि अलौकिक भागवत है ना, अलौकिक भागवत। चंद्रमणि दादी और अमृतसर एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हमारी कोई भी ऐसी दादी नहीं है जिन्होंने कदम ना रखा हो, और साकार बाबा ने भी कदम रखा और हमारी आदरणीय चंद्रमणि दादी ने ऐसा जबरदस्त पार्ट बजाया और इतना सुंदर पार्ट बजाया कि किसी की हिम्मत नहीं रही कि किसी भी बात के लिए वो आगे आ सके। धीरे धीरे सब मेल्ट होते गए और बाबा को पहचानने लगे, और बाबा भी वहाँ पर गए और वो कहानी भी आपने सुनी है। चंद्रमणि दादी के होते हुए पूरे अमृतसर और आसपास के शहरों से वारिस क्वालिटी निकला। आज वो वारिस क्वालिटी भारत और विदेश के अंदर कितनी सेवा कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से अलौकिक इतिहास के अंदर अमृतसर का बहुत महत्व है। तो आप सब कितने महत्वपूर्ण स्थान से यहाँ बाबा के विशेष स्थान पर आए हैं। तो बाबा कहते, ये मेरे लाडले बच्चे हैं, सिकीलरे बच्चे हैं। और दो तीन दिन पहले बाबा ने एक बहुत अच्छी पॉइंट कही थी। बाबा ने कहा, ये मेरे भाग्यशाली बच्चे हैं। कौन है भाग्यशाली? अच्छा, फिर बाबा ने कहा, सौभाग्यशाली कौन है? हैं? फिर बाबा ने क्या कहा था? हजार भाग्यशाली। फिर क्या कहा? हजार में कम है, है ना? अरे, सौ से हजार में गए तो होना चाहिए ना ज्यादा, हजार भाग्यशाली। फिर बाबा ने कहा कि पदम भाग्यशाली, वो एक दो ही है ना वो एक तो ही है ना अच्छा, फिर बाबा ने कहा पद्मों के बाद क्या कहा? अरब भाग्यशाली। अरे, अरबों की कमाई है आपको, बोलो हम अरब भाग्यशाली है। और खरब भाग्यशाली, सब जिन्होंने हाथ नहीं उठाया, वो क्या किया खजाना, ये देखो सोच रहे हैं क्या किया खजाना, कौन ले गया आपका, माया को दे दिया क्या? हैं, माया को तो नहीं दिया ना। अच्छा, अभी मैं बताती हूँ, जब बाबा कहते हैं भाग्यशाली, तो भाग्यशाली का अर्थ क्या है कि बाबा ने आप सबको स्वयं चुना, खुद आपने भक्ति में भक्ति किया लेकिन कुछ भी प्राप्ति नहीं हुई, बाबा ने चुन करके पैदा करते ही एडॉप्ट करते ही भाग्य बना दिया। तो भाग्यशाली हम नहीं बने हैं, हमको बाबा ने बनाया है, बाबा ने बनाया है। फिर बाबा कहते हैं सौभाग्यशाली, जब बाबा कहते हैं ना तो सौभाग्यशाली वही हैं जो बाबा की शिक्षाओं से और बाबा के प्यार से अनुभव करते हैं, उनको कहते हैं सौभाग्यशाली। और पद्म परम भाग्यशाली किसको कहते हैं, जो श्रीमत पर कदम पे कदम, बाबा कहते जो श्रीमत का अच्छी तरह से पालन करते हैं, जैसी हमारी आदरणीय चंद्रमणि दादी और उनके साथ राज दीदी और इन्होंने चंद्रमणि दादी राज दीदी इन्होंने कोई बात नहीं, एक मिनट हो जाएगा। इन्होंने बाबा की श्रीमत को ऐसे पालन किया जैसे कि वो पद्मा पदम भाग्यशाली बन गए। और उसके बाद जो भाग्य बनता है वो है धीरे धीरे वारिस क्वालिटी का, और वो धीरे धीरे वारिस क्वालिटी का बनता है। तो बाबा क्या चाहते हैं कि मेरे सब बच्चे वारिस क्वालिटी बने। तो आप सब वारिस क्वालिटी है ना, जो वारिस क्वालिटी बनेगा वो ऑटोमेटिकली अरब भाग्यशाली और खरब भाग्यशाली बन जाएगा। क्यों, सतयुग में विश्व महाराज बनना है, ये कोई कम बात तो नहीं है ना, सब बन जाएंगे। तो विश्व महाराज बनेंगे या फिर क्या बनेंगे, हैं, विश्व महाराजन बनेंगे या रॉयल फैमिली में आएंगे, विश्व महाराजन बोलो ना। विश्व महाराजन बनने से पहले कहाँ आएंगे, रॉयल फैमिली में आएंगे तब तो बनेंगे ना। पहले रॉयल फैमिली में आना है, रॉयल बाप के रॉयल बच्चे हैं। तो बाबा रॉयल बच्चों को बहुत कुछ समझाते हैं। बाबा कहते रॉयल बच्चों को क्या करना है, अपने संस्कारों को रॉयल बनाना है, अपने अंदर ज्ञान के द्वारा इतना भरपूर करना है जैसे कि बाबा बच्चों को चाहते हैं कि फरिश्ता बन जाए। बाबा कहते हैं ना फरिश्ता बनो, तो फरिश्ता की विशेषता क्या है, क्या होता फरिश्ता है, देखो फरिश्ते को दिखाते हैं लाइट ड्रेस और उसके ऊपर चमकते हुए सितारे दिखाते हैं। तो हम बच्चे जो बाबा के बने, बाबा जो हमको कहते हैं फरिश्ता बनो, तो बाबा हमको कितने स्टार्स देते वो आपको मालूम है। देखो दुनिया में कभी कोई स्कूल में जाता है बच्चा, उसको शुरू से लेकर के अंत तक पढ़ाई पढ़ेगा तब जाकर के उसको बैरिस्टर डॉक्टर इंजीनियर का टाइटल मिलेगा। और यहाँ आते ही कदम रखा नहीं, बाबा ने कहा मेरे भाग्यशाली हैं, फिर कहेंगे सौभाग्यशाली हैं, फिर कहेंगे नैनों के नूर हैं, फरिश्ता हैं, विश्व परिवर्तक हैं, महादानी हैं, कल्याणी हैं, वरदानी हैं। कितने टाइटल मिले, कितने टाइटल मिले गिनती कर सकते हो, कितने वरदान मिलते हैं गिनती भी नहीं कर सकते ना। लौकिक में भी देखो कोई मिलिट्री में जाता है उसको जब एक स्टार होता है वो नीचे के लेवल का है, उसके ऊपर दूसरे को दो स्टार होगा उससे थोड़ा हायर है, और किसी के तीन होगा हायर होगा, लास्ट वाले को नौ होंगे तो द टॉप वन कहलाता है। तो हमको कितने स्टार हैं, कितने स्टार हैं, गिनती किया है कभी, देखा अपनी ड्रेस, देखी कि नहीं, नहीं देखी है ना, फरिश्ते की ड्रेस नहीं देखी है। आपको बाबा ने ऐसी लाइट चमकती हुई फरिश्ते की ड्रेस दे दी है जिसके ऊपर हर समय वरदानों के स्टार चमकते रहते हैं, और वो वरदानों के स्टार दूसरों को बहुत अच्छे अनुभव कराते हैं। अच्छा मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जिन्होंने चंद्रमणि दादी को देखा वो हाथ खड़ा करो, काफ़ी सारे हैं, बाकी चंद्रमणि दादी के चरित्र से ही बहुत कुछ सीखा है। तो हम आपको बताएं कि हमारी चंद्रमणि दादी तो इतनी त्यागी, तपस्वी और क्या नहीं था। कभी भी जैसे बाबा अव्यक्त हुए तो बाबा ने दादी प्रकाशमणि जी को निमित्त बनाया। तो इन दादियों की हमने इतनी विशेषताएं देखी हैं कि दादियों का आपस में बहुत बड़ा संगठन था। मुझे याद आ रहा है एक बार किसी बात के लिए दादी ने चंद्रमणि दादी को कहा कि ये कार्य करना है, लेकिन वहाँ से ही किसी ने कहा दादी ऐसा नहीं आपको करना। दादी कहते क्या, चुप, आगे एक अक्षर नहीं बोलना। क्यों? दादी मीन्स बाबा, बाबा ने दादी को रखा है तो बिल्कुल संगठन इतना मजबूत, दादी जो कहे उसके आगे कुछ भी नहीं परिवर्तन होगा। दादी ने कहा माना, बाबा ने कहा, कभी भी अहंकार नहीं। इतनी पावरफुल शक्ति, बाबा ने उनको टाइटल दिया शेरे पंजाब। इतनी पावरफुल, इतनी निर्माणचित और इतना हंसाती थी। और मैं आपको बताती हूँ कि मैं चंडीगढ़ में नौकरी करती थी तो दादी चंद्रमणि वहाँ पर चंडीगढ़ में आती थी। दादी का स्वरूप तो आप देखते हैं कितना, थोड़ा सा पावरफुल, क्लास पावरफुल। तो जब चंद्रमणि दादी आती थी तो मैं क्या करती थी, काम करके अपने आप को कहीं ना कहीं किनारे छिपा देती थी। तो चंद्रमणि दादी कहीं ना कहीं से ढूंढ के लाती थी मेरे को, कहती है ये बालकी, इसको तो बहुत कुछ करना है, इसको ये भी करना है, अब हम तो नौकरी करती हैं, हम क्या कर पाएंगे। वो तो हम कुछ भी नहीं जानती थी, लेकिन चंद्रमणि दादी का जो प्यार था और प्यार, उस प्यार के कारण बहुत से अनुभव कराए और बहुत सी शक्तियां भरी। और उस समय चंडीगढ़ के अंदर अचल दीदी थी, अचल दीदी भी बाबा की ऐसी लाडली, ऐसी पक्की और इतने बिल्कुल हर बात में एक मत होकर के चलते थे। तो ये एक हमने दादियों से सीखा है। और उसके बाद हमारी राज बहन कितनी प्यारी, बाबा के बच्चे बने, पूरा का पूरा परिवार ऐसा समर्पित परिवार निकला। और राज बहन भी त्याग तपस्या की मूर्त, चंद्रमणि दादी के साथ रह कर के बहुत कुछ किया। और अभी तो आप सबको आदर्श दीदी कितने प्यार से पालना कर रही है और उनकी पालना से भी कितने अच्छे अच्छे बाबा के रतन बढ़ते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। तो दादियों का तो इतिहास बहुत बड़ा है, लेकिन साथ साथ ये मधुबन का भी इतिहास बहुत बड़ा है। तो इसलिए मधुबन का भी यहाँ आना, इसका भी बहुत बड़ा महत्व है। वहाँ पर तो आप सबको अच्छा स्थान है, सब तरह से आराम से सुविधा से रहते हैं, लेकिन यहाँ पर बाबा के घर में जब बच्चे आते हैं तो बाबा के टाइम पर जब सब आते थे तो सब के सब कहाँ रहते थे, पट पर सोते थे। बाबा खुद ध्यान देते थे और बाबा कहते थे ये मेरे पट राजा और पट रानियाँ। अभी कहाँ पर सोते हो, हैं, खटिया पर, अभी क्या कहेंगे? अरे नहीं, अभी तो ये कहना है हम बाबा के दिल तख्त नशीन है। बोलो, हाँ, बाबा के दिल तख्त नशीन है। बाबा के होते हुए ना ये हॉल था, बाहर भी कच्चा फर्श था, इस मौसम के अंदर कभी न कभी जीव जंतु भी आ जाते थे घूमने के लिए, लेकिन बाबा और उनके बच्चे कभी डरते नहीं थे। अभी तो सब चीज़ बाबा ने बच्चों के लिए हर प्रकार की सुविधा बना दी है। और जब हम आते थे तो अपने साथ बड़ा सा बिस्तर उठा के लाते थे, पंजाब का बिस्तर समझ सकते ना, मोटी सी रजाई, इतनी मोटी रजाई, और बहुत से वो लेकर के, एक बहुत राउंड करने वाला होता था, वो लेकर के आते थे। लेकिन अभी बाबा ने वो सुविधा दे दी है कि किसी को कोई भी प्रकार का कष्ट ना हो। और बाबा के टाइम पर छोटे हॉल के अंदर भी कोई सोफा नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था। दीदी का थोड़ा सा टांग का तकलीफ हुआ तो एक कुर्सी दीदी के लिए रखी गई थी, और सब दादियां जो है नीचे ही बैठती थी, सब दादियां और दादा नीचे बैठते थे। तो जब बाबा अव्यक्त हुए तो पहले तो अव्यक्त बाप दादा बाबा के कमरे में आने लगे, फिर बाबा जो है हिस्ट्री हॉल में आने लगे, और हिस्ट्री हॉल भी साकार बाबा ने खुद खड़े होकर के बनवाया है, और जो ट्रेनिंग सेक्शन है वो भी साकार बाबा ने खुद बनवाया है। जाने से पहले बाबा आधा पोर्शन तो बन चुका था नीचे का, ऊपर के पोर्शन के बाबा ना डायरेक्शन भी दे करके गए थे, वो भी बाबा ने बनवाया। फिर बाबा हिस्ट्री हॉल में आने लगे, फिर बाबा के बच्चे बढ़ते गए। फिर क्या हुआ, एक बार अव्यक्त बाप दादा पांडव भवन के आंगन में आए, बहुत बड़ी स्टेज बनाई थी, दो बार खाना मिलता था, सुबह का नाश्ता और लंच सुबह, और शाम को 6 बजे के अंदर खाना खा लेते थे। 6 बजे अव्यक्त बाप दादा का पधरा मनी हुई। फिर उसके बाद ये प्लान किया गया कि कुछ नया स्थान बनाया जाए, तो जहाँ पर आप ये बैठे हैं ये क्या है, ये पहाड़ी है, यहाँ पर बहुत बड़ी अंगूर की बेल थी, और ये अंगूर की बेल में बड़ा बड़ा अंगूर, उसके अंदर एक बीज होता था, और मम्मा के 24 जून के दिन बाबा ये सब बेल और अंगूर भारत के विभिन्न स्थानों पर भेजते थे। अमृतसर में तो पहले ही पहुँच जाता था, जहाँ दादियाँ थी वहाँ तो पहुँचता ही था, चाहे टोली हो चाहे कुछ भी हो। फिर उसके बाद प्लान किया गया कि ये कुछ हॉल बनाया जाए, तो इस पहाड़ी पर ही ये मेडिटेशन हॉल बनाया गया, और 1975 से अव्यक्त बाप दादा इस हॉल में आने लगे। अव्यक्त बाप दादा, ये कोई स्टेज नहीं थी, अव्यक्त बाप दादा यहाँ बैठते थे और हम सब कहाँ बैठते होंगे, इधर थोड़ी हम बैठेंगे, हम तो यहाँ बैठते थे हम तो यहाँ पास में छोटे छोटे बच्चे की तरह वहाँ बैठते थे। और अभी आपको देखो डबल चांस मिला है, ये अव्यक्त बाप दादा की श्रेष्ठ वरदानी हॉल है, और ये पहाड़ी है साकार बाबा की तपस्वी पहाड़ी। बाबा यहाँ पर पहाड़ी पर आकर के बैठ के तपस्या करते थे, आपने बाबा का एक फोटो देखा होगा ये ऐसे तपस्या करते हुए, वो इसी पहाड़ी का है। तो बाबा यहाँ बैठते थे, एकांत में आते थे, और फिर कभी कभी दादियाँ बाबा दादियों को बुलाते थे और गीत बजा देते थे, धरती को आकाश पुकारे, वो सब दौड़ दौड़ के आ जाते थे। फिर बाबा क्या करते थे, दादियाँ क्या करते थे, योग की तपस्या करते थे, और तपस्या के साथ साथ और कई प्रकार के विचार सागर मंथन बाबा उनको देते थे कि सेवा कैसे करनी है। यज्ञ का इतिहास तो बहुत बड़ा है, मैं आपका लंबा टाइम नहीं लूँगी। और बाबा के पास जब बच्चे आते थे ना तो बाबा बहुत प्यार करते थे, कभी कभी पार्टी आती थी तो बाबा आंगन में खड़े होते थे और आकर के बच्चों को मिलते थे। फिर उसके बाद बच्चे आएंगे तैयार होकर के, कहेंगे हमको तो बाबा से मिलना है, उनको हम लोग कहते थे क्यों बाबा से मिलोगे, अभी तो मिले हैं, कहते टोली थोड़ी खाई है, टोली क्या है, क्या है टोली, जन्म सिद्ध अधिकार है। कभी सेंटर पर रोज क्लास में टोली मिले नहीं ना, वहाँ तो जब कोई प्रोग्राम होगा, कोई दीदी आएगी, बड़ी बहन आएगी, तब टोली मिलेगी ना, यहाँ मधुबन में तो डबल टोली मिलती है। फिर बाबा ने बहुत बच्चों को बहुत प्यार करते थे, बाबा कहते थे मेरे लाडले बच्चे हैं, इनको खाली हाथ नहीं भेजना है। बाबा दृष्टि देते, वरदान देते, फिर सौगात देते थे। बाबा की सौगात तो ऐसी अमूल्य सौगात हैं, उसका तो हम वर्णन नहीं कर सकते ना,